ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितास्य। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भीत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीम् धर्मेष्ठयार्यवचसाम् यद्गाधरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षरम् यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीयद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। नरदेवत्वम् आपन्न है शूरकार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादीने चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नरदेवत्वम् आपन्न है शूरकार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादीने चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नरदेवत्वम् आपन्न है शूरकार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादीने चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नरदेवत्वम् आपन्न शूरकार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादीने चक्रे वीर्याण्यतः परम्। नर मनुष्य देवत्वम देवत्व आपन्न है का स्वरूप ग्रहण करके शूरा देवता कार्य कर्म चिकित्सया संपन्न करने के लिए समुद्र हिंद महासागर निग्रह आदि ने निग्रह इत्यादि चक्र किया व्रियाणी अति मानवीय प्रकर्म अतः परम तत्पश्चात। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद तथा तात्पर्य अनुवाद। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। पुनरावृत्ति करें, 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य से हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकश्यपु जैसे बड़े बड़े असुर नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ भौतिक साधनों के द्वारा अनेक लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती हैं और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं, लेकिन भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्रीराम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फल स्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती को स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की हैं, क्योंकि वे कहीं भी या सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है जिससे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इस पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैदिक शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि आज के दिवस को हम दशहरा के नाम से जानते हैं। आश्विन मास शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को दशहरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। दशहरा, दस का मतलब दस मुख वाले और बीस भुजा वाले, हारा मतलब भगवान ने हारा दिया। दस मुख वाले को और बीस भुजा वाले को, एक मुख वाले दो भुजा वाले भगवान श्री राम ने आज ही के दिन रावण का वध कर दिया। रावण हार गया, मारा गया, इसलिए आज की तिथि को हम दशहरा के नाम से पुकारते हैं। यह जो तिथि है शुद्ध तिथि है, जैसे अक्षय तृतीया है, दशहरा है, दीपावली है, ये सब शुभ तिथियां मानी जाती हैं। इन तिथियों में कोई भी आप कार्य कर सकते हैं। तो भगवान के षड ऐश्वर्यों में बल ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया गया है। दशहरा मतलब रावण का वध यह सिद्ध करता है कि भगवान सबसे बलवान है। भगवान जैसा कोई बलिष्ठ नहीं है, वे कालों के भी काल हैं। लेकिन याद रखें, इस संसार का ऐसा स्वरूप है कि इस संसार में लोग दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रवृत्ति वाले दोनों निवास करते हैं। अनादिकाल से ये परंपरा आती रही है। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में भगवान दैवी और आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। जिस समय भगवान नृसिंह का अवतार हुआ, उस समय भी हिरण्यकश्यपु था सतयुग में। जिस समय राम जी हुए, उनका विरोधी रावण हुआ। जिस समय भगवान कृष्ण हुए, उनका विरोधी कंस हुआ। इस संसार में लोग एक दूसरे के सदैव प्रतिद्वंदी रहते हैं। इस संसार का नियम है देव असुर एवच, दैवी प्रकृति वाले और आसुरी प्रवृत्ति वाले, दोनों प्रवृत्ति वाले लोग निवास करते हैं। देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसके विपरीत दूसरी पार्टी माने दूसरे प्रतिद्वंदी तैनात रहते हैं, हमेशा एक दूसरे की आलोचना करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। जब भगवान का स्वतः अवतार हुआ, फिर भी उनका विरोध रावण किया, हिरण्यकश्यपु किया, दुर्योधन, शिशुपाल इत्यादि सब करते रहे। तो द्वंद्वात्मक यह है संसार है, इस संसार में यह सब होते रहता है। तो त्रेता युग में रावण भी एक बहुत बड़ा अत्याचारी राजा था। आप सभी जानते हैं कि भगवान के जो दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जो सनकादिक जी के साप से 3 जन्म को प्राप्त हुए, प्रथम जन्म में हिरण्यकश्यपु हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतवक्त शिशुपाल हुए। तो रावण के बारे में ऐसा वर्णन है महाभारत में और वाल्मीकि रामायण में भी। तो महाभारत थे कि वनपुर में ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण संसार को रुलाने के कारण दशानन का नाम रावण पड़ा। रावण का जो पहला नाम है, इसका नाम है दशानन, माने जिसके 10 मुख हो उसको दशानन कहते हैं। इसका 10 मुख जन्म जात है। इसके बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी हुए और पुलस्त जी के पुत्र विश्रवा मुनि हुए और विश्रवा मुनि का विवाह सुमाली राक्षस की कन्या कैकसी के साथ हुआ। तो कैकसी के गर्भ से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, शूर्पणखा का जन्म हुआ। तो रावण के पिता विश्रवा मुनि हुए और माता कैकसी हुई। रावण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रावण लंका का राजा था और इसका जन्म वैवस्वत मनु के 11वें त्रेता युग में हुआ था। ये श्वेत वराह कल्प चल रहा है, तो श्वेत वराह कल्प के 24वें त्रेता युग में श्री राम जी ने रावण का वध किया था। इस प्रकार रावण की कुल आयु उम्र 5,61,60,000 वर्ष की थी। इसकी पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो एक पतिव्रता नारी थी, जिनकी गिनती पंचकन्याओं में की जाती है। पंचकन्या बहुत प्रसिद्ध है, याद रखें। ब्रह्मांड पुराण में ऐसा वर्णन है, अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मदुंदरी तथा पंचकन्या स्मृत नित्यम महापातक नाशनम। मदुंदरी पांच कन्याओं में होने के कारण परम पवित्र मानी जाती हैं। पंच कन्याओं को यह वरदान है कि उनके पतियों की मृत्यु हो जाने पर उनकी गणना कुमारी कन्याओं में होगी, याद रखें। अतः इसी आधार पर विभीषण ने मंदोदरी का और सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को स्वीकार किया था। तो पंच कन्याएं मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी, जो सदैव रावण को राम के बारे में बताती रहती थी कि राम साक्षात परम भगवान है, इनके साथ विरोध मत कीजिए नहीं तो पूरे कुल का नाश हो जाएगा। लेकिन रावण इतना अहंकारी था, अहंकार विमूढ़त्मा करता हम इति मन्यते, वह मंदोदरी की बात को नहीं माना। तो कहने का भाव यह है कि रावण एक अभिमानी राजा था, क्योंकि रावण भगवान के द्वारपाल जय विजय ही बने हुए हैं, बहुत बलिष्ठ था। विद्वान लोग कभी कभी बखान करते हैं कि रावण 52 चौकड़ी राज किया, 52 चौकड़ी मतलब 52 चतुर्युग, बहुत बलिष्ठ था। और रावण विद्वान था लेकिन यह दुराचारी था, व्यभिचारी था और अत्याचारी ब्राह्मण था। ब्राह्मण कुल में इसका जन्म हुआ था, कुल उत्तम था, उत्तम कुल पुलस्त करणाति। लेकिन ये अपने अत्याचार से, अपने दुर्व्यवहार से, अपने तप के बल से पूरे संसार को अपने वश में किया था। ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ये तीन भाई थे, 10,000 वर्ष ये तप करके शक्ति प्राप्त किए। रावण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहे कि वरदान मांगो, तो रावण ने यही वरदान मांगा था, हम काहू के मरे ही न मारे, बानर मनुज जात दी वारे, बंदर और मनुष्यों को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी के हाथ न हो। रावण ने सोचा कि सब देवताओं को भी मैं अपनी मुट्ठी में कर लिया हूं, मैं जो चाहता हूं वो करवा लेता हूं, देवता हमारे यहां पानी भरते हैं तो बंदर और मनुष्य में क्या रखा है। लेकिन सरस्वती जी उसके जिहवा पर सवार थे। वरदान मांगते समय रावण ने यही मांगा कि बानर मनुज जात दीवार, बंदर और मनुष्य को छोड़कर मेरी मृत्यु किसी से न हो। तो बंदर और मनुष्य के रूप में साक्षात भगवान राम ने रावण का वध किए, नल नील उसके सिर को नोच करके देखते थे। हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, बंदर और भालू रावण को बहुत तंग किया। ये बहुत बड़ा अभिमानी था। और याद रखें, ऐसा वर्णन मिलता है कि इतना अत्याचारी था कि किसी भी सुंदर कन्या को देखता था या किसी भी सुंदरी कुमारियों को देखता था तो जबरदस्ती बलात् उसे अपहरण कर लेता था। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार कुबेर, नल कुबेर की स्त्री को जो पूजा करने के लिए जा रहे थे जबरदस्ती उन्हें उठा लिया। तो नलकुबर ने इसे श्राप दिया, यदि आज से तुम किसी भी परिस्त्री के ऊपर दृष्टि डालोगे, उसकी अनिच्छा के कारण यदि तुम उसे संभोग करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करोगे, उसी समय तुम्हारे सिर 100 टुकड़े हो जाएंगे। रावण को इस बात को मालूम था, ब्रह्मा जी का भी इसे अभिशाप था, पुंजी का स्थला को भी उन्होंने एक बार अपहरण किया, ऐसे ही जबरदस्ती बलात् उठा लिया। तो ब्रह्मा ने भी उसे यही अभिशाप दिया था। तो किसी भी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध समागम करने के लिए तैयार हो गए, उसी समय तुम्हारा सिर 100 टुकड़े में हो जाएगा। तो याद रखें, रावण सीता जी का अपहरण किया, लेकिन सीता जी से हमेशा विनय करता रहा, तुम मेरे अधीन हो जाओ, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, लेकिन सीता जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि रावण का एक मंत्री ने कहा कि क्यों सीता जी से इतना विनय करते हो, सीता जी तो तुम्हारे अशोक वाटिका में है, तुम जो चाहो सो कर सकते हो, इतना विनय करने की क्या बात है, आग्रह क्यों इतना कर रहे हो। रावण कहा कि नहीं, मैं जानता हूं पतिव्रता नारी के सतीत्व को, मैं जानता हूं, क्योंकि रावण पे अभिशाप है, अगर सीता जी को जबरदस्ती किडनैप तो कर लिया, लेकिन सीता जी को किस नहीं कर सकता था, याद रखिए, कभी नहीं चुम्बन ले सकता था, केवल अक्वारी में भर करके अपने रथ पर बैठा दिया, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था, अगर कुछ करने को तैयार होता तो उसके सिर 100 टुकड़े हो जाते, इस बात को जानता था, इसलिए वो मनौती कर रहा था, तुम मेरी बात को मान जाओ, अभिशाप था। रावण की मृत्यु के कारण सीता जी बनी, आप सभी जानते हैं कि सीता जी पूर्व जन्म में वेदवती नाम की कन्या थी, ये वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। वो तप कर रहे थे, रावण गया आकाश मार्ग से, देखा उतरा और देखा कि तो बहुत सुंदर कन्या है, वेदवती के प्रति आकृष्ट हो गया और उसे काम क्रीड़ा के लिए निवेदन करने लगा, वेदवती नहीं तैयार हुई, जबरदस्ती उनके सिर के बाल को पकड़ लिया, तुरंत वेदवती ने घास का तिनका उठाया और अपने बाल को काट दिया, उसके हाथ में बाल दिखाई दिया और कहा वेदवती ने कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी मृत्यु की कारण बनूंगी, ऐसा कहकर वेदवती ने अपने शरीर को त्याग दिया। तब वेदवती ही सीता जी के रूप में आई और सीता के रूप में आकर के उन्होंने रावण का संहार कराया। स्त्री ही मृत्यु के कारण, सीता जी ही मृत्यु के कारण बनी। तो बहुत बड़ा अत्याचारी था, कहने का मतलब यह था किसी की बात को नहीं सुनता था। देखिए यह है अत्याचारी, लेकिन इसकी जो स्त्री है वो बिल्कुल सदाचारिणी है, वो पतिव्रता है, मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है, मेघनाद ये असुर है, लेकिन मेघनाद की पत्नी का नाम सुलोचना है, वो वासुकी नाग की कन्या है, वो भी पतिव्रता नारी थी। रावण भी बलिष्ठ है, इनका लड़का मेघनाद भी बलिष्ठ है, जिनको कोई मार नहीं सकता था। मेघनाद को दुर्गा देवी का आशीर्वाद था कि जो व्यक्ति 12 वर्षों तक निद को त्याग देगा, सोएगा नहीं और जो स्त्री संग नहीं करेगा और सदा फलहारी रहेगा, वही व्यक्ति तुझे मार सकता है और किसी में शक्ति नहीं है जो तुम्हारा वध कर सके। तो लक्ष्मण जी थे, 14 वर्षों तक वन में लक्ष्मण जी रहे लेकिन सोए नहीं, और जिनकी पत्नी अयोध्या में रही है वे वन में रहे और कंदमूल का हार किए, अन्न का कभी आहार नहीं किए। तो सुलोचना जी थी वो पतिव्रता नारी थे, पतिव्रता नारी के पति को कोई जल्दी मार नहीं सकता है, मेघनाथ बहुत बलिष्ठ था, वो यज्ञ कर रहा था, लेकिन यज्ञ से ही वो युद्ध में चला गया। सुलोचना कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध कर दिया और मेघनाथ की भुजा जब सुलोचना के पास आई तो देख करके आश्चर्यचकित रह गई, ये क्या हो गया। भुजा ने वहां पर कटी हुई भुजा, उस भुजा ने भूमि पर लिखा कि मेरा मस्तक, मेरा वध लक्ष्मण ने कर दिया है, शेषा अवतारी लक्ष्मण ने किया है। और सिर कहां गया? सिर गया राम जी के पास, धड़ ऐसे ही पड़ा रह गया। अगर सिर धरती पर गिर जाता तो पूरी बांदरी सेना धस नस हो जाती, क्योंकि उसकी स्त्री पतिव्रता थी। हनुमान जी उस सिर को ले जाकर राम दल में ले गए। सुलोचना गई थी अपने पति का शीश मांगने के लिए राम जी की शरण में, और सारी बांदरी सेना वहां मौजूद है, भगवान मौजूद हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सुलोचना ने कहा, यदि मैंने तन मन वचन से अपने पति की सेवा की है तो ये सिर हंस करके बोल दे कि किसने तुम्हारा वध किया है, मेरे पति को कोई नहीं मार सकता था, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे पति युद्ध में चले गए, हम तो जानते थे कि यज्ञ कर रहे हैं। सुलोचना कहती है कि यदि मेरे पिता को जानकारी होती मैं अपने पिता को बुला लेता, आपका कोई वध नहीं कर सकता था। यह सुनकर के मेघनाथ हंस दिया। वासुकी नाग की कन्या थी, शेषा अवतार लक्ष्मण जी हैं, याद रखें। मेघनाथ का सिर हंस दिया कि तुम किसे बुलाते, तू अपने पिता को बुलाती ना, तुम्हारे पिता ने ही मेरा वध किया है, तुम बुलाते किससे। जब देखकर वह आश्चर्यचकित रह गए। सिर बोल दिया, कटा हुआ सिर सतीत्व के आधार पर बोल दिया, ये है पतिव्रता नारियों में शक्ति, वे अपनी इच्छा से सती हो सकती है अपने पति के साथ, उनमें शक्ति है। तो मंदोदरी भी पतिव्रता नारी है, सुलोचना भी पतिव्रता नारी है, लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला भी पतिव्रता नारी है, लेकिन मेघनाथ क्यों मारा गया। विद्वान कहते हैं कि इधर दो नारियों का सतीत्व हो गया और उधर एक, इधर का पलड़ा भारी हो गया, मेघनाथ का पलड़ा हल्का हो गया, क्योंकि उधर केवल सुलोचना बच गई और इधर सीता जी और उर्मिला, दो सतियों का बल हो गया, इसके चलते उभारा गया। दूसरी बात है कि वो असुर का साथ दे रहा था, रावण का साथ दे रहा था, ये दोनों सतीत्व जो नारियां हैं ये धर्म की साथ दे रहे थे। कहने का भाव यह है कि असुर हैं लेकिन इनकी पत्नी पतिव्रता नारी है, जो अपनी पतियों की सेवा करती हैं। बहुत बलिष्ठ थे, योद्धा थे, लेकिन याद रखें रावण के पास जो बल था, मेघनाथ के जो पास जो बल था, इनका बल देखिए, और एक तरफ भगवान का बल और भगवान की सेना का बल देखिए, लक्ष्मण जी का बल देखिए, अंगद जी का बल देखिए, हनुमान जी का बल देखिए। जिस समय रावण सीता जी को चुराने के लिए गया तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच कर गए थे, उस रेखा को रावण लांग नहीं सका, जब ही लांगने का प्रयत्न करता उस रेखा से ज्वाला निकलती थी, ऐसी ज्वाला निकलती थी कि जो जाएगा रेखा पार करेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो वही मदोदरी कहती है रावण से, समझाती कहती थी, देखा आपने भगवान के भाई का बल, आप में क्या बल है जो आप एक रेखा को नहीं लांग सके, एक रेखा को नहीं लांग सके, कुत्ते की भांति गए और सीता जी को चुरा करके लाए, एक नारी का आपने अपहरण किया, आपका क्या बल है। एक साधारण बंदर गया, एक हनुमान जी एक बंदर गया और पूरी लंका को जला करके आ गया, आप क्या किए उसका, कुछ कर सके। और एक बंदर ऐसा आया जो भरी सभा में सर्वोच्च ऊंचा आसन लगा दिया और प्रवचन करके चला गया, आप उनका क्या कर सके, आपका मुकुट भी फेंक दिया, आप कुछ नहीं कर सके। उस बंदर का पैर भी टच से मच नहीं हुआ। क्या आपका बल है, आपकी योद्धाओं का क्या बल है? भगवान जैसा कोई बलिष्ठ नहीं है, आप उनके शरण में जाइए। सीता मृत्यु काल बन करके आई है, इसे लौटा दीजिए सीता को, नहीं तो पूरे वंश का नाश हो जाएगा। फिर भी रावण नहीं माना, इतना बड़ा अहंकारी था। अहंकार विमूढ़त्मा करता मुनि मन्यते, ऐसे अहंकारी को भगवान राम ने बद्ध कर दिया। कहा जाता है कि इतना बलिष्ठ था कि खेल खेल में एक बार कैलाश पर्वत को उठा लिया, खेल खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया, और उस पर्वत पर शिव जी पार्वती जी के साथ विराजमान थे। पार्वती जी डर गई, अरे ये क्या हो गया, पर्वत को कौन उठा दिया? शिव जी अपने अंगूठे से पर्वत को दबाए, पर्वत दब गया और रावण की बीसों भुजाएं पर्वत के भार से दब गई। अब वह खींचने लगा, हटाने लगा, खींच रहा था, लेकिन उसकी भुजाएं पर्वत के भार से अलग नहीं हो सकी और वह रोता रहा। ऐसा वर्णन है कि 1000 वर्षों तक वह रोता रहा, इसलिए उसका नाम पड़ा रावण। जो स्वयं रोवे और दूसरे को भी रुला दे अपने कुकर्मों से, उसका नाम है रावण। रोने से उसका नाम रावण पड़ा, रावण मतलब रुलाने वाला। इसके ऐसे कुकर्म थे जो दूसरे को रुलाते थे, कहीं भी वेद पाठ नहीं होने देता था, यज्ञ नहीं होने देता था। और याद रखें, ये सोने की नगरी में रहता था, लंका में, सोने की नगरी है। लंका के बारे में ऐसा वर्णन है, लंका हड्डी पर बसी हुई है, उस नगरी में केवल राक्षस ही रह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। लंका नगरी के निर्माण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि लक्ष्मी जी के तो बहुत सुंदर वैभव हैं, उनके भवन बहुत सुंदर हैं, आप भी मेरे लिए सुंदर भवन का निर्माण कीजिए ना। शिव जी अपनी पत्नी की बात सुनकर प्रसन्न हुए और पार्वती जी की प्रसन्नता के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिए और विश्वकर्मा सुंदर सोने की नगरी तैयार कर दिया। भवन सोने की नगरी मतलब तैयार हो गया, इनका भी भवन बन गया, तैयार हो गया बन करके। तब शिव जी ने कहा गृह प्रवेश तो कराओ, गृह प्रवेश तो होना चाहिए, तो गृह प्रवेश कराने के लिए पंडित चाहिए। तो उस समय विश्रवा मुनि आए, पुलस्त के पुत्र विश्रवा मुनि आए, महान पंडित थे, और वो पंडिताई के गिरी प्रवेश कराए। शिव जी ने कहा दक्षिणा मांगिए, तो दक्षिणा में वे उसी नगरी को मांग लिए, सोने की नगरी को ही दक्षिणा में मांग लिए, तो लंका की नगरी विश्रवा मुनि को हो गई। और विश्रवा के पुत्र थे वैश्रवण कुबेर जी, जो रावण के सौतेले भाई थे, उनको दान में दे दिए। तो कुबेर जी उस पर राज करने लगे लंका नगरी पर। जब रावण को इस बात की जानकारी हुई कि मेरा भाई सौतेला भाई उस पर राज कर रहा है, तो जबरदस्ती वह लंका नगरी पर धावा बोल दिया और कुबेर जी वहां से हट गए, वे गंधमादन पर्वत पर चले गए और लंका नगरी में वो राज करने लगा। और कुबेर जी को पुष्पक विमान भी ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था कुबेर जी को, और शिव जी से मित्रता भी करा दिया था। ये विश्रवा के पुत्र थे, इनका नाम वैश्रवण था कुबेर जी का, लेकिन इनके पिताजी इन पर सदैव नाराज रहते थे। तो अपने पिता की प्रसन्नता के लिए कुबेर जी 3 कन्याओं को अपने पिता को प्रदान किए थे, पुष्पोत्कटा राता मालिनी, वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। इनसे भी अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए, कल्प भेद थे, बातें बिल्कुल सत्य आती हैं। कहने का भाव यह है कि रावण जो कुबेर जी के पास पुस्तक विमान था, वह विमान महाराज बाबू का विमान था। महाराज रघु बहुत बड़े प्रतापी राजा थे और दानी थे, जब बहुत से यज्ञ करते रहते थे। तो धनाध्यक्ष कुबेर भी देखे कि ये तो महादानी है, चले हम भी दान में इनसे पुष्प विमान को ही मांग ले। महाराज रघु के पास गए, वो दान कर रहे थे, है कि जिसकी जो इच्छा हो वो दान मांग ले। तो कुबेर ने कहा, हे महाराज मुझे पुष्पक विमान दे दीजिए। महाराज रघु ने उस पुष्पक विमान दे दिया। पुष्पक जो पुष्प के आकार का हो उसका नाम पुष्पक विमान है, प्रदान कर दिया। तो वही पुष्पक विमान था जो जिसको रावण ने भी प्राप्त किया था, या पुष्पक विमान पर चढ़ करके ही लंका से भगवान अयोध्या में आए थे और पुनः पुष्पक विमान को फिर विभीषण जी को प्रदान कर दिया। वो राम जी का ही विमान था। तो रावण भी बहुत बलिष्ठ योद्धा था, क्योंकि भगवान का पार्षद है। फिर भी याद रखें, आज का दिन यह याद दिलाता है कि मनुष्य के अंदर जो शत्रु हैं, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। राम विजयादशमी, इन शत्रुओं को जीतना चाहिए, तभी यह मानव जीवन सुलभ हो सकता है, सार्थक हो सकता है। जीतकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम रावण में जब युद्ध हो रहा था तो ऐसा कहा जाता है कि रावण तो रथ पर सवार था, लेकिन भगवान रथ पर नहीं थे। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। जब लंका में राम रावण से युद्ध हो रहा था तो विभीषण जी कहे, प्रभु ये तो रथ पर सवार है और आप तो बिना रथ के हैं, आपके पांव में जूते भी नहीं हैं और तन की रक्षा करने वाला कोई कवच भी नहीं है, वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। तब भगवान ने कहा कि हे सखे सुनो, जिसे जय होती है वह रथ दूसरा ही होता है। उस रथ को धर्ममय रथ कहा जाता है। धर्ममय जिसके पास रथ हो उसे कोई भी शत्रु नहीं हरा सकता है। तो धर्ममय रथ क्या है, वर्णन किया गया कि सौरज धीरज तही रथ चाका, सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। या कि सौरज और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। कौन से रथ, धर्ममय रथ के, धर्म रथ के। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम मन इंद्रियों को वश में होना और परोपकार, ये उस धर्ममय रथ के चार घोड़े हैं। क्षमा दया और समता रूपी डोरी से जो रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तर्कस के समान है। सम मन मन को वश में करना, अहिंसा यम नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजा यही अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। हे सखे, विभीषण जी से कहते हैं, हे सखे हे मित्र, ऐसा धर्ममय रथ जिसको हो, जिसके पास हो, उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु भी नहीं है, कोई भी नहीं जीत सकता है। राम धर्म पर चलने वाले थे। प्यारे बंधुओं, आज का दिन यह याद दिलाता है कि अधर्म से धर्म पर चलना चाहिए, असत्य से सत्य की ओर चलना चाहिए, कुमार्ग से सतमार्ग की ओर चलना चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए और विनम्र होना चाहिए। ये शक्ति किसके पास थी, भगवान श्री राम के पास थे। बिल्कुल, ये धर्म में रथ है और वास्तव में वैष्णव की सबसे बड़ी यही शक्ति है, विनम्र होना चाहिए, अहंकार को त्याग देना चाहिए। अहंकार व्यक्ति को खा जाता है। रावण बहुत बड़ा अहंकारी था। विभीषण भी समझाए नहीं माना, इनकी पत्नी समझाई नहीं माना, कुत्ते की पूंछ जैसे इसकी अडिग थी, किसी की बात को नहीं सुनता था। अंत में भगवान के हाथों मारा गया। रावण का रोल करके जगत में यह शिक्षा दी गई, क्या? परनारी पैनी छुरी मत को लाओ अंग, रावण के दस शीश गए परनारी के संग। रावण जो भगवान का पार्षद है, सब कुछ जानता था, यानी ऐसी बात नहीं कि ये भगवान नहीं है, उसके बात मालूम कि ये साक्षात भगवान है, इसलिए तो उनके साथ तो विरोध उठाना था, इनके हाथों हमारी मृत्यु हो जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन रावण रोल करके दिखलाया, दुर्योधन रोल करके दिखलाया कि ऐसा कुकर्म करने से ऐसा फल मिलता है। कुमार को त्याग देना चाहिए, अधर्म को त्याग देना चाहिए और धर्म पर चलना चाहिए। यह है राम विजया दशमी। अधर्म पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। रावण कुमार पर चलने वाला व्यक्ति था, इसके पास करोड़ों सैकड़ों स्त्रियां थी, फिर भी ये काम या बहुत बड़ा काम ही था। सीता जी को अपहरण किया, जिसके चलते इसका नाश हो गया। परनारी पैनी छुरी, शब्दों पर ध्यान दीजिए, परनारी पैनी छुरी मत को लाओ अंग, रावण के दस शीश गए परनारी के संग। दूसरे की स्त्री छुरे की धार के समान है, मत को लाओ अंग, उसे अपने अंग में सटाने की कोशिश मत करो। जैसे रावण ने प्रयास किया सीता जी को बस में करने का, तो जुआवस्था में रावण मारा गया, उसका वध कर दिया गया। इसलिए धर्म की मर्यादा में रहना चाहिए। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा मतलब धर्म के घेरे में, धर्म के दायरे में रहना चाहिए, धर्म पर पांव देना चाहिए, कुमार पर पांव नहीं देना चाहिए। तो धर्ममय रथ से भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त किया, नहीं तो रावण को कोई नहीं जीत सकता था। रावण के नाभि में अमृत का कुंड था। प्रश्न उठता है, वो अमृत का कुंड कहां से आ गया? विद्वान लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि रावण के सिर में सहस्त्र दल कमल था और उस कमल का सार तत्व टपकता था, तो रावण यौगिक क्रिया से उस कमल के सार तत्व को, अमृत तत्व को अपने नाभि कुंड में एकत्रित किया था। तो इस बात को दूसरा कोई नहीं जानता था, लेकिन विभीषण जी जानते थे, इसके नाभि में अमृत का कुंड है। जब तक से इसके अमृत कुंड को शोषण नहीं किया जा सकता है, तब तक से रावण का वध नहीं किया जा सकता है। कुछ विद्वान कहते हैं कि रावण के हृदय में सदैव सीता जी निवास करते थे और सीता जी के नेत्रों से अमृत के अश्रु झलकते थे, तो वे अमृत में अश्रु उसके नाभि कुंड में एकत्रित हुए थे, जिसके चलते उसका वध करना बहुत मुश्किल था। तो रावण का विभीषण ने बताया कि प्रभु इसके नाभि में अमृत का कुंड है, इसलिए पहले उस अमृत कुंड को शोषण कीजिए, तभी यह मारा जाएगा, नहीं तो ऐसे इसका वध नहीं हो सकता है। तब भगवान श्री राम ने 31 बाण चलाए, 31 बाण, एक बाण माने 10 बाण से उसकी 10 भुजाओं पर, एक बाण से अमृत कुंड को शोषण कर लिए, रावण के नाभि में जो अमृत का कुंड था, अमृत था, उस अमृत को शोषण कर लिए। और 30 बाण वो किसके लिए? 10 बाण उसकी 10 मुख के लिए और 20 बाण उसकी 20 भुजाओं के लिए। 31 बाण चलाकर राम जी ने रावण का वध कर दिया, उतना बड़ा असुर मारा गया, नहीं तो ऐसे उसे कोई नहीं मार सकता था। भगवान कालों के काल हैं, याद रखिए, भगवान जैसा कोई बलिष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी वो भगवान के शरण में नहीं गया, इतना बड़ा अहंकारी था। अहंकार को व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, ये हमारे इस्कॉन की परंपरा है, चेतन महाप्रभु के मिशन की परंपरा है, अमानिना मान देना कीर्तनियों सदा हरि, एक दूसरे को मान सम्मान दे करके उन्हें वैष्णव बनाना चाहिए, कीर्तन कराना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा कहा जाता है कि रावण विद्वान होते हुए भी लोभी दुराचारी और कामी था, और मनुष्य का पाप ही मनुष्य को खा डालता है, जैसे रावण का पाप ही रावण को खा गया। तो पाप से बचना चाहिए, कली के चार महान पाप है, हाँ सभी जानते हैं, इस कान में प्रतिदिन बताया जाता है। और दूसरी बात, सीता जी का स्पर्श करने से, केवल टांग कर रथ पर रखने से रावण का अमंगल हुआ और उसका पूरा वंश चौपट हो गया। ऐसा कहा गया है कि 1 लाख बेटा 1.25 लाख नाती, ओकरा घर में दिया न भाती। भगवान से विरोध करके कोई बच नहीं सकता है, रावण के सारे पुत्र मारे गए, उसका वंश ही चौपट हो गया, विभीषण जी शरणागत हो गए, बच गए, आज विभीषण जी लंका के राजा हैं और चिरंजीवी हैं। तो भगवान के शरण में जाना चाहिए, यदि रावण भगवान के शरण में आ गया होता तो आज भी वो राज करता, लेकिन नहीं आया, उसका तेज भगवान में लीन हो गया, उसका वध किया गया। ऐसा कहा जाता है कि राम भजे सो पूत है न तो मूत का मूत। व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, रावण मरा लेकिन भगवान का हा राम कहते हुए अपने शरीर को त्यागा, हा राम कहते हुए शरीर को त्यागा, वो भी भगवान का स्मरण किया। भक्त भी भगवान का स्मरण करते हैं और असुर भी भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर यह है, एक को प्रेम से भगवान विमान पर बैठा करके अपने धाम में ले जाते हैं और एक को तमाचा मार करके बाण से बध करके उसे अपना धाम प्रदान करते हैं, यही अंतर है। वो आश्री भक्त है, विरोधाभास से भगवान का ही वो चिंतन कर रहा है लेकिन विरोधी है, वैसे लोगों को मार करके भगवान अपना धाम प्रदान करते हैं। तो आज का दिन हमें यही याद दिलाता है कि अधर्म से को छोड़कर धर्म पर चलना चाहिए, कुमार को छोड़कर के सन्मार्ग पर चलना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से कभी विरोध नहीं करना चाहिए और मिथ्या अहंकार को त्याग देना चाहिए। यह है राम विजय दशमी, आज का दिवस हमें यही याद दिलाता है, रावण पर भगवान विजय प्राप्त किए, अहंकारी था और पूरे समाज में शांति व्यवस्था कायम किए, रावण का वध होने के बाद पूरे समाज में शांति व्यवस्था छा गई, सभी लोग सुख शांति एवं समृद्धि से अपने राज में रहने लगे और भगवान का गुणगान गाने लगे। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राजा राम चंद्र की जय। कोई जिज्ञासा है प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, बोलिए। वैकुंठ मूर्ति प्रभु, व्याख्या भी आप दे सकते हैं, comment.
हरे कृष्णा।
हाँ,
आज का दिन ने जो विजयादशमी में आपने वर्णन किया, राम जी विजय उत्सव किए थे रावण को मार के, लेकिन हम देखते हैं कि दुर्गा देवी का जो पूजा हो रहा है उसमें महिषासुर का वध हो रहा है। तो अभी देखिए उत्सव राम जी का है लेकिन दुर्गा जी मार रहे हैं उसको, महिषासुर को, तो उसका तो कुछ वर्णन नहीं किया आपने।
इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो वैष्णव होते हैं वे भगवान की आराधना करते हैं और जो कम बुद्धि वाले होते हैं वे केवल देवी की आराधना करते हैं। रामायण में ऐसा वर्णन नहीं है कि दुर्गा जी की सहायता से राम जी ने रावण का वध किया था, क्योंकि भगवान स्वयं शक्तिशाली हैं। दुर्गा जी तो उनकी दासी हैं, लेकिन वैष्णव लोग नवरात्र करते हैं तो भागवत का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं। जैसा गीता में भगवान कहते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम। जो कम बुद्धि के लोग होते हैं वे देवी और देवता के शरण में जाते हैं और अपनी मनोकामना के लिए वे देवी की आराधना करते हैं। लेकिन वैष्णव लोग कहीं भी होंगे भागवत का पाठ करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे, भगवान की आरती पूजन करेंगे, भगवान का जप करेंगे। ये बात है, देवी भक्त लोग वैसा करते हैं, वैष्णव तो भगवान की आराधना करते हैं। और नवरात्र में 9 दिन पाठ किया जाता है, तो वैष्णव 9 दिन तक जप करेंगे, भागवत का पाठ या रामायण का पाठ करेंगे, सप्तचंडी का पाठ, दुर्गा जी के जो भक्त हैं वे लोग करते रहते हैं। अगर आप जानते हो तो बोल सकते हैं, व्याख्या दे सकते हैं।
हरे कृष्ण, जो रावण का आयुष कितना था?
हाँ बोला गया ना 5 करोड़ 61 लाख।
पांच करोड़ 61 लाख है तो
वो तपस्वी था, तप करके वो अपनी आयु प्राप्त किया था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था।
तृतीयजोग का आयुष कितना था?
हैं?
तृतीयजोग का आयुष कितना था?
क्या बोल रहे?
तृतीयजोग का आयु कितना था?
त्रेताजुग का?
हाँ,
12,96,000 वर्ष।
चलो 12 लाख, ये इतना क्यों, इसका क्यों इतना बढ़ गया?
बहुत वर्षों तक ये राज किया। चतुर्युग समझते हैं ना, कहते 52 चौकड़ी, मतलब एक चौकड़ी मतलब 4 युग बीत जाते हैं, उसके एक चौकड़ी हुआ तो 52 चौकड़ी मतलब 52 चतुर्युग बीत गए। एक मन्वंतर 71 चतुर्युग का होता है। जैसे भीषण जी राजा बने तो भगवान ने कहा कि एक मन्वंतर तक राज करोगे, एक मन्वंतर 71 चतुर्युग या 72 चतुर्युग को कहा जाता है। एक माने 72 चतुर्युग जो 4 बार बीत जाएंगे, एक एक बार बीत जाएंगे 71 बार, तो 71 चतुर्युग उतने काल तक विभीषण जी का राज रहेगा लंका पर। तो उसी प्रकार से रावण भी था, बहुत वर्षों तक वो राज किया।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरि बोल
प्रभु जी। नवरात्रि का जो परंपरा कब से प्रारंभ हुआ?
किस चीज की?
नवरात्रि का जो परंपरा कब से प्रारंभ हुआ और किनके द्वारा ये परंपरा बनाया गया?
नवरात्र तो रामायण में वर्णन है कि भगवान की नवमी तिथि को प्राकट्य हुआ, इसलिए नवमी तिथि मनाई जाती है रामनवमी। शरदीय नवरात्र है, कार्तिक मास का नवरात्र है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, और नवमी तिथि भक्ति की तिथि है, नवदा भक्ति का द्योतक है। तो 9 दिनों तक भगवान की भक्ति करके लोग भगवान को प्रसन्न करते हैं। भगवान राम के जन्म से ये नवमी तिथि मनाई जाती है। अनादिकाल से है, अनादिकाल से युग है, अनादिकाल से भगवान है।
तो कहने का तात्पर्य भगवान राम से ही ये नवमी तिथि मनाया गया है,
ऐसा तो सुनने में आता है।
नवरात्र का जो परंपरा भगवान राम के द्वारा ही,
राम से ही है, नवमी तिथि वहीं से प्राप्त होती है वो तिथि।
नवमी तिथि का बात मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि
नवमी का मतलब है नवमी तिथि, 9 दिनों की, उसी को नवरात्र बोलते हैं। नवरात्र मतलब 9 दिनों तक भगवान की पूजा पाठ करने की पद्धति का नाम है नवरात्र। जैसे पंचरात्र, 5 रात्रि नहीं, पंचरात्र, पंच आरात्र माने 5 प्रकार से जिनका पूजन किया जाता है उसको पंचरात्र बोलते हैं। तो नवरात्र माने 9 दिनों की, जो 9 दिनों तक जिनकी आराधना की जाती है उसको नवरात्र बोलते हैं। तो केवल रात्रि से नहीं, आराती मतलब आराधना से मतलब है, नौ दिनों तक आराधना की किया जाता है।
तो राम जी ने किसका आराधना किए थे?
राम जी तो स्वयं भगवान है, भगवान अपना ही चिंतन करते हैं, उनको स्वरूपानंद कहा जाता है, निजानंद कहा जाता है, अपने स्वरूप में भगवान मस्त रहते हैं और भगवान अपने भक्त का चिंतन करते हैं, भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान निजानंद स्वरूपानंद अपने स्वरूप में भगवान मस्त रहते हैं।
तो
लेकिन भगवान कहते हैं ओमाम पश्यति, गीता पढ़िए छठा अध्याय, ओमाम पश्यति सर्वत्र सर्व चमय पश्यति, जो मुझको देखता है मैं उसको देखता हूं। जैसे राम जी अयोध्या में रहते थे, भरत जी कश्मीर में रहते थे अपने ननिहाल में, लेकिन फिर भी भरत जी राम जी का चिंतन करते थे और राम जी भरत जी का चिंतन करते थे। जैसे कछुआ अपने अंडे का चिंतन करके अंडे को से देता है चिंतन से, वैसे राम जी चिंतन करते हैं। तो जो भक्त भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान अपने उनके भक्त का, अपने भक्त का चिंतन करते हैं, ऐसे वो स्वरूपानंद है, अपने स्वरूप में आनंद रहते हैं।
तो यहाँ जो नवरात्रि में दुर्गा जी का जो आराधना किया जाता है, तो ये परंपरा किसने बनाया, ये मेरा पूछने का आशय है।
देखिए दुर्गा जी भगवान की दासी हैं और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, सुनते जाइए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्वयं भगवान है, लेकिन भगवान अगर आचरण करके जगत को नहीं सिखलाते तो आज हम किसी को माता पिता नहीं मानते। रामावतार में भगवान ने यही सिखलाया कि एक गुरु के प्रति, एक पिता के प्रति, एक माता के प्रति, है मित्र के प्रति, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, आचरण करके भगवान ने सिखलाया। शिव जी का भी इन्होंने स्थापना किया, शिव जी को भी मान सम्मान दिया। भगवान यात्रा में जा रहे हैं, चित्रकूट जा रहे हैं, वनगमन कर रहे हैं, या बीच में नदियां पड़ती हैं, नदियों को भी भगवान प्रणाम करते हैं। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि देवी देवताओं को सम्मानित करना चाहिए, उन्हें आशीर्वाद लेना चाहिए, उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, मर्यादा भगवान ने सिखलाया। तो इसलिए देवी देवताओं को सम्मानित करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी और देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं और वे भी भगवान की सेवा में हाजिर हैं। जैसे भगवान का पूजन किया जाता है तब पहले गणेश का पूजन किया जाता है, देवताओं को भी सम्मानित किया जाता है। क्यों? कि भगवान की सेवा में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आने पाए, और कोई विघ्न आए ये देवता लोग उस विघ्न को रोक दें और हम भगवान का पूजन आराम से करें, इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है। ये नहीं कि यही सब कुछ, भगवान अनादिकाल से हैं और अनादिकाल से युग आ रहा है, नवरात्रि ये भी अनादिकाल से है, आज से नहीं है, ये परंपरा है। तो नौमी तिथि भगवान राम के जन्म से ही नवरात्र को हमको तो हम मैंने मैंने जहां तक सुना है पढ़ने को मिलता है नौ दिन की, ऐसे देवी की आराधना करने वाले कुछ भी हो नौ दिन करें ठीक है, वो भी वर्णन किया गया है, क्योंकि 18 पुराण हैं, 17 पुराणों में सकाम कर्म कांडों का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण जो जजमेंट देता है हम उसी को मानते हैं, और हम लोग भी देवी देवताओं को सम्मानित करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, भगवान राम ने ये सिखलाया। तो नवरात्र नौ दिन तक जम करके व्रत किया जाए, उपवास किया जाए, नौ दिन तक आप भागवतम का या रामायण का पाठ करें और नौ दिन तक आप जप करें, जप करके आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको देवी को भी प्राप्त करना है, देवी को प्रसन्न करना है, तो सप्तचंडी आप जो उनका पाठ किया जाता है उसको पढ़ करके देवी को प्रसन्न कीजिए, उनका मंत्र जप करके उनको प्रसन्न कीजिए। नौ दिनों में आप किसी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान को भी प्रसन्न कर सकते हैं, देवी को भी प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। कम बुद्धि के लोग ज्यादा उधर आकर्षित होते हैं, वैष्णव तो ज्यादा भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। अब सुन लीजिए थोड़ा सा, रावण देवी देवताओं को सिद्ध किया था, कुंभकर्ण देवी देवताओं को सिद्ध किया था, याद रखिए, और मेघनाथ भी, कुंभला देवी है ना बोलते हैं, उसको भी वो सिद्ध किया था, उसके पास भी नारायण अस्त्र थे, लेकिन लक्ष्मण से युद्ध करने में उसके अस्त्र शस्त्र फेल हो गए, नहीं काम किए। शिवजी बाणासुर के तरफ से युद्ध किए थे भगवान कृष्ण के साथ, लेकिन युद्ध में शिवजी भी हार गए, उनकी कोई शक्ति नहीं काम की। और खुद रावण भी देखिए आया, शिवजी का आराधना किया, लेकिन शिवजी नहीं गए रावण के तरफ से, वो जानते थे कि भगवान समस्त बलवानों के स्रोत हैं, इनसे बड़े इनके इनकी शक्ति के आगे मेरी कोई शक्ति नहीं काम करेगी, इसलिए मारे कृष्ण राखे के राखे कृष्ण मारेंगे। भगवान बलिष्ठ हैं, देवी देवता होते हुए भी सिद्ध करके भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये बंदरों को जीत नहीं सके, उनको हार खानी पड़ी, क्योंकि भगवान के शरणागत नहीं हुए। यदि विजय चाहिए तो भगवान की शरण में आइए, जैसे भीषण जी विजय को प्राप्त हुए वैसे आप भी विजय को प्राप्त होंगे, आपका जीवन मंगलमय रहेगा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
हाँ जी,
छोटा सा जिज्ञासा है, समाधान करने की कृपा करें। जो रामेश्वरम जो तीर्थ है
जी,
बड़े श्रद्धालु जाते हैं और वहाँ पूरा वही लोगों का मन में रहता है कि ये राम जी के ईश्वर हैं, शिव जी को बड़े मानते हैं और राम जी को वहाँ छोटा कर देते हैं। और हमारे दस नाम अपराध में बताया जाता है पाषंडी, जो ब्रह्मा और शिव जी को भी भगवान के समान और उनसे स्वतंत्र समझता है वो पाषंडी है, मतलब बहुत बड़ा अपराधी है। तो रामेश्वरम का क्या अर्थ है, राम जी जिनके ईश्वर है या फिर राम जी का ईश्वर शिव जी है, क्या पता?
सुनिए ध्यान से, बहुत सुंदर प्रश्न है, अब बहुत से लोग पूछते रहते इस बात, याद रखें शिव राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की है, शिव जी की स्थापना की है, नाम दिए रामेश्वर। भगवान अपने भक्तों को हमेशा सम्मानित करते हैं, याद रखिए इस बात को। तो शिव जी को राम जी ने सम्मानित किया क्योंकि लंका नगरी में जा रहे हैं, वही उसी अर्थ पर आ रहे हैं, और शिव जी का भक्त है रावण, तो शिव जी को खुश कर ले ताकि ये भी रावण की तरफ से लड़ने के लिए न जाए, इसलिए भी रामेश्वर जी की स्थापना की है, रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। शिव जी महान वैष्णव है, जब राम जी ने कहा कि राम रामेश्वर राम रामेश्वर रामस्य रामस्य ईश्वरो इति रामेश्वर, राम ही जिनके ईश्वर हैं, शिव जी अर्थ करते हैं कि राम ही जिनके ईश्वर हैं उसका नाम है रामेश्वर, लेकिन राम जी ने शिव जी को बड़प्पन दिया, लेकिन शिव जी ने किसको बड़प्पन दिया, राम जी को बड़प्पन दिया। तो राम जी का शिव जी का राम जी के साथ तीन संबंध है, याद रखिए, एक सखा भाव का संबंध है, एक ईश्वर का संबंध है और एक स्वामी का संबंध है, स्वामी और सेवक का भी संबंध है। शिव जी का तीन भाव रहता है राम जी के साथ में। तो शिव जी के रामेश्वर का अर्थ ही विद्वान लोग वैष्णव लोग अर्थ ये करते हैं कि राम ही जिनके ईश्वर हैं, माने शिव जी ने यही अर्थ किया कि हे प्रभु आप ही हमारे ईश्वर हैं, इसलिए इस स्थान का नाम है रामेश्वर। लेकिन राम जी ने अर्थ किया कि नहीं आप ही ईश्वर हैं, मैंने उनको सम्मानित किए, बड़प्पन, भगवान अपने भक्तों को मान सम्मान देते हैं। सुन अर्जुन प्रतिज्ञान मोरी यह भक्त तरत नकारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, भक्त के लिए ही तो भगवान सारथी बन गए। रामेश्वर का अर्थ यही है, राम ही जिनके ईश्वर है उनको रामेश्वर कहते। शिव जी ने यही अर्थ पसंद किया, हे प्रभु आप हमारे ईश्वर हैं, हम आपके ईश्वर नहीं है, हम तो आपके दास हैं, हम तो आपके सेवक हैं, इसलिए हम आपका सदैव नाम जप करते हैं, आप तो हमारे आराध्य देव हैं। स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जहां सदा मुनि धीरा, ये अर्थ है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि युग चक्र के ऊपर आप कह रहे थे, जैसे 24वां युग चक्र में भगवान ने रावण का वध किया करके आपने कहा, 24वां जो युग चक्र,
हाँ
24 नंबर जो युग चक्र है उसमें से रावण का वध किया करके आपने कहा, तो अभी का जो युग चक्र चल रहा है कौन सा, हम जो युग चक्र
मंत्र चल रहा है,
वैवस्वत मंत्र का युग चक्र कौन सा है, कौन सा युग चक्र अभी चल रही है हमारा?
ये तो वैवस्वत मनमंत्र के 28वीं चतुर्योगी चल रहा है,
28वां
जी, क्योंकि भगवान कृष्ण को गए 5000 वर्ष बीते, ये तो 28वीं चतुर्योगी चल रहा है, द्वापर के बाद ये कलयुग आया है।
तो फिर जैसे आपने कहा
24वें चतुर्योगी में
24वां चतुर्युग चल रहा है, अभी चल रहा है 24वां, 28वां अभी चल रहा है ना,
वैवस्वत मनमंत्र के 24वें चतुर्योगी
24वां चल रहा है, पर मैंने सुना था 28वां युग चक्र है,
अभी 28वां चल रहा है ना,
हाँ 28वां अभी चल रहा है, तो ऐसा वर्णन मिलता है कि
24वें चतुर्योगी में राम जी ने रावण का वध किया था त्रेता युग में।
तो त्रेता ऊपर गया था और द्वापर नीचे आया था, वहां
लाखों वर्ष बीत गए।
तो अभी भी ऐसा, जैसे कि 28वां युग चक्र में हम जहां रह रहे, सत्य उसके बाद त्रेता, उसके बाद द्वापर, उसके बाद कली है, हम जो युग चक्र में रह रहे, ऐसा ही हुआ ना? सत्य के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कली।
मनवंतर के लिए, इस मनवंतर में युग का क्रम बदला है, सभी मनवंतरों में नहीं बदलता है। सतयुग के बाद द्वापर आता है, तब त्रेता, तब कलयुग आता है। लेकिन इस मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर में, गौतम जी ने अपने तप के प्रभाव से जीव का क्रम बदल दिया है अहल्या की रक्षा के लिए।
हाँ, वो जो कारण था कि अहल्या जी ने जो अनुरोध किया था उन्हें,
उनका यथाशीघ्र उद्धार के लिए जीव का क्रम बदल दिया। एक के बाद तीन नहीं आना चाहिए, एक के बाद दो आना चाहिए, तो एक के बाद तीन आ गया, सतयुग के बाद त्रेता आ गया, जबकि दो आना चाहिए। ये गौतम जी की तपस्या का चमत्कार है, तो इतनी शक्ति होती है।
तो वही जो कहानी के माध्यम से जैसे कहा जाता है कि अहल्या जी के लिए ही युग का परिवर्तन किया गया है, जैसे भगवान राम को, क्योंकि भगवान राम के द्वारा ही उनको क्या है, मुक्ति मिलने वाली।
देखिए एक बात याद रखें, ये वैदिक जो शास्त्र है इसे तीन चार कल्पों की कथाएं दी गई है, अलग अलग कल्पों की कथा है। कल्प भेद से सभी कथाएं बिल्कुल सत्य है। अब कौन कब से है, क्या है, इसके कैलकुलेशन में मति चकरा जाती है, समझ रहे हैं ना? लेकिन कल्प भेद करके लोग निकल जाते हैं, एक कल्प विधि यही अवतार, एक कल्प में अवतार हुआ, एक कल्प में अवतार हुआ, ऐसा कहा गया है। जैसे कहा गया 84 लाख जूनियां होती है, अब हम 84 लाख जूनियों को तो पूरा नहीं गिना सकते। अब कीड़ों मकोड़ों की 11 लाख जूनियां, अब कीड़ों मकोड़ों 11 लाख अब जूनियां हम कैसे गिना सकते, आप समझ गए? लेकिन उसको ऐसे 10 लाख 11 लाख ऐसे करके शॉर्ट कट में बोल दिया जाता है 84 लाख जूनियां, ऐसे कल्प भेद बताया जाता है। लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है श्रुति प्रमाण कि 24वें वैवस्वत मनवंतर के 24वें त्रेता युग में राम जी ने रावण का वध किया था, ऐसा कथाकार बोलते। अगर आप जानते हो तो आप बता सकते हैं।
नहीं, मुझे कुछ नहीं जिज्ञासा,
कमेंट व्याख्या दे सकते हैं, दोनों तरफ की बात है, हमने जो सुना है, पढ़ा है, बोल दिया, आप भी अगर सुने हो तो आप भी व्याख्यान दे सकते हैं। हरे कृष्ण।
तमाल कृष्ण प्रभु की।